होशे अध्याय पांच। होशे अध्याय पांच खोलें और देखें कि होशे आगे परमेश्वर से और क्या संदेश लाता है। अध्याय पांच में होशे भविष्यद्वक्ता याजकों के लिए, हाकिमों के लिए और राजा के कुटुंब के लिए परमेश्वर का वचन लाता है। होशे अध्याय पांच पद एक। हे याजकों, ये बात सुनो। हे इसराइल के सारे घराने, ध्यान देकर सुनो। हे राजा के घराने, तुम भी कान लगाओ, क्योंकि तुम पर न्याय किया जाएगा, क्योंकि तुम मिस्पा में फंदा और ताबोर पर लगाया हुआ जाल बन गए हो। ताबोर गलील क्षेत्र का एक प्रमुख पर्वत है। उसकी पहचान बड़ी आसान है, क्योंकि ये गुम्मट के आकार का पर्वत है। कॉन्स्टेंटाइन की मां हेलेना को ऐसा लगा कि यीशु का रूपांतरण वहां हुआ था, अतः वहां यीशु के रूपांतरण आराधनालय बना दिए गए। परंतु धर्मशास्त्र के अनुसार यीशु दूसरा एक पहाड़ पर गया जो दूर था। ताबोर पर्वत ना तो दूर था और ना ही ऊंचा था, वो तो एकदम बीच में है। ये अति संभव है कि उसका रूपांतरण हर्मोन पर्वत पर हुआ था। मिस्पा हर्मोन पर्वत की श्रेणियों में से एक है, जो लेबनन की निकट उत्तरी सिरे पर है। प्रथा के अनुसार ये माना जाता है कि जब उत्तरी राज्य की सीमा निर्धारण किया गया, तब यरोबाम की चिंता का प्रमुख कारण था कि लोग आराधना के लिए यरूशलेम जाएंगे, अतः उसने बछड़े की आराधना का शिलान्यास किया तथा बेतेल में और दान में आराधना स्थलों की स्थापना की। उसके मन में ये भय था कि यदि उसकी प्रजा आराधना हेतु यरूशलेम जाएगी तो उनका मन यहूदा से लग जाएगा, अतः उसने पूरा प्रयास किया कि उन्हें रोके रहे। वे बताते हैं कि कुछ लोग ताबोर और मिस्पा पर खड़े होकर देखते थे कि लोग यरूशलेम तो नहीं जा रहे हैं कि उनका विनाश किया जाए। ये एक विचार है। अब दूसरा विचार मेरी समझ में अधिक तर्कपूर्ण है। लोग यरूशलेम जाने के लिए ताबोर पर्वत में से छिपकर चल सकते थे। यर्दन की घाटी का मार्ग ताबोर पर्वत पर से दिखता नहीं था, और दूसरा मार्ग था उत्तरी गलील का, जो मिस्पा से छिपा हुआ था। ये वो क्षेत्र था जहां चिड़ियों को पकड़ने के लिए जाल भी डाले जाते थे। अतः ये एक कहावत बन गई थी कि मिस्पा का फंदा और ताबोर का जाल। होशे अध्याय पांच पद दो। उसने कहा, उन बिगड़े हुओं ने घोर हत्या की है, अर्थात वे मूर्ति पूजा ऐसी तड़क भड़क में करते थे कि लोगों के मनों में हत्या करने का जोश उत्पन्न हो जाता था। उन बिगड़े हुओं ने घोर हत्या की है। होशे अध्याय पांच पद दो से लेकर पांच तक। इसलिए मैं उन सबों को ताड़ना दूंगा। मैं, परमेश्वर घोषणा करता है, एप्रेम उत्तरी राज्य का प्रमुख गोत्र का भेद जानता हूं, और इसराइल की दशा मुझसे छिपी नहीं है। हे एप्रेम, तूने छिनाला किया और इसराइल अशुद्ध हुआ है। उनके काम उन्हें अपने परमेश्वर की ओर फिरने नहीं देते, क्योंकि छिनाला करने वाली आत्मा उनमें रहती है और वे यहोवा को नहीं जानते हैं। इसराइल का गर्व उसी के विरुद्ध साक्षी देता है, और इसराइल और एप्रेम अपने अधर्म के कारण ठोकर खाएंगे, और यहूदा भी उनके संग ठोकर खाएगा। वे परमेश्वर से दूर होकर देवी देवताओं की आराधना करने लगे थे, जिसे परमेश्वर वेश्यावृत्ति मानता है। वे बाल और अन्य देवताओं की मूर्तियों की पूजा करते थे, जिसे परमेश्वर आत्मिक व्यभिचार कहता है। इसका फल उन्हें मिलेगा और वे मारे जाएंगे। ये एप्रेम और यहूदा दोनों के पतन की भविष्यवाणी है। होशे अध्याय 5:5 से लेकर 7 तक। वे अपनी भेड़ बकरियां और गाय बैल लेकर यहोवा को ढूंढने चलेंगे, परंतु वह उनको ना मिलेगा, क्योंकि वो उनसे दूर हो गया है। वे व्यभिचार के लड़के जने हैं। यद्यपि वे बहुत से बलिदान लेकर यहोवा के भवन में आए, परंतु वह उनको ना मिलेगा, क्योंकि वह उनसे दूर हो गया है। वे मुझे अब खोज नहीं पाएंगे। होशे अध्याय 5:7 से लेकर 9 तक। इससे उन्होंने यहोवा का विश्वासघात किया है, इस कारण अब चांद उनका और उनके भागों के नाश का कारण होगा। गिबा में नरसिंगा और रामा में तुरी फूको, बेतावेन में ललकार कर कहो, हे बिन्यामीन अपने पीछे देख। न्याय के दिन में एप्रेम उजाड़ हो जाएगा। जिस बात का होना निश्चय है, मैंने उसी का संदेश इसराइल के सब गोत्रों को दिया है। परमेश्वर कहता है, मैं अब बता देता हूं कि क्या होकर रहेगा। होशे अध्याय 5:10। यहूदा के हाकिम उनके समान हुए हैं जो सिवाना बढ़ा लेते हैं। मैं उन पर अपनी जल जलाहट जल की नाई उंडेलूंगा। उत्तरी राज्य का पतन यहूदा के लिए दुख का कारण न होकर राज्य विस्तार का अवसर हुआ। परमेश्वर ने उनके इस स्वभाव के कारण उनको झिड़का। वे उत्तरी राज्य के पतन पर दुख मानने की अपेक्षा उसे एक अच्छा अवसर मान रहे थे कि वे अपने राज्य का विस्तार करें। होशे अध्याय 5:11 से लेकर 15 तक। परमेश्वर घोषणा करता है, एप्रेम पर अंधेर किया गया है, वो मुकदमा हार गया है, क्योंकि वो जी लगाकर उस आज्ञा पर चला। इसलिए मैं एप्रेम के लिए कीड़े के समान और यहूदा के घराने के लिए सड़ाहट के समान हूंगा। जब एप्रेम ने अपना रोग और यहूदा ने अपना घाव देखा, तब एप्रेम अशूर के पास गया और यारेब राजा को कहला भेजा, परंतु ना वो तुम्हें चंगा कर सकता है और ना तुम्हारा घाव अच्छा कर सकता है, क्योंकि मैं एप्रेम के लिए सिम और यहूदा के घराने के लिए जवान सिम बनूंगा। मैं आप ही उन्हें फाड़कर ले जाऊंगा। जब मैं उठा ले जाऊंगा, तब मेरे पंजे से कोई छुड़ा न सकेगा। जब तक वे अपने को अपराधी मानकर मेरे दर्शन के खोजी न होंगे, तब तक मैं अपने स्थान को लौटूंगा, और जब वे संकट में पड़ेंगे, तब जी लगाकर मुझे ढूंढने लगेंगे। परमेश्वर यहां कह रहा है कि वे किस प्रकार मानवीय बुझ बल की सहायता की ओर मुड़ गए। अपने संकट के समय में वे परमेश्वर से सहायता मांगने की अपेक्षा अशूरों की ओर गए कि उन्हें मानवीय सहायता प्राप्त हो। आज मैं अपने दामाद से बात करते हुए कह रहा था कि कैसे दुख की बात है कि कलीसिया ने पवित्र आत्मा के कामों के स्थान पर मनुष्य की बुद्धि को महत्व दे दिया है। हम सोचते हैं कि हम सेमिनारी में प्रशिक्षण लेकर आए हैं, इसलिए हम में योग्यता और समझ आ गई है, हमने मनोविज्ञान सीखा है, हम मानवीय व्यवहार समझते हैं, हम मनुष्यों की भावनाओं के साथ खेलना भी सीख गए हैं। इस प्रकार कलीसिया ने पवित्र आत्मा के सामर्थ्य और कार्य की अपेक्षा मनुष्य की बुद्धि में विश्वास रखना आरंभ कर दिया है। आत्मा के कामों को मानवीय दक्षता के अधीन कर देना ही मानवीय भुजा का संयोग कहलाता है। एप्रेम का यही पाप था, वो अशूरों से सहायता मांग रहा था, जबकि अशूर ही उन्हें दंड देने के लिए परमेश्वर की लाठी होने वाले थे। पद 15 में परमेश्वर कहता है कि वो अपने स्थान को लौट जाएगा और वे तब तक उसे नहीं पा सकेंगे जब तक कि उन्हें अपने अपराध का बोध नहीं हो जाएगा कि वे गलत है। हमने परमेश्वर से मुंह मोड़कर वाचा तोड़ी है, हमने उसके नियमों का उल्लंघन किया है। परमेश्वर कहता है कि जब तक वे अपनी भूल को पहचान कर मेरी खोज नहीं करते, तब तक मैं उनसे मुंह छिपाए रखूंगा। जब उन पर विपत्तियां आएगी तब वे मुझे खोजेंगे। गलती से यहां अध्याय समाप्त कर दिया गया है, जबकि इस अध्याय को अगले अध्याय के पद 3 तक चलना था। हमारा स्वभाव यह है कि जब अध्याय समाप्त होता है तो हम विचारधारा को तोड़ देते हैं और सोचते हैं कि नए अध्याय में नया विचार होगा, परंतु यहां ऐसा नहीं है। अध्याय 5 का विचार अध्याय 6 में चल रहा है। परमेश्वर कहता है, जब तक वे अपने आप को अपराधी मानकर मेरे दर्शन के खोजी न होंगे, तब तक मैं अपने स्थान को नहीं लौटूंगा, और जब वे संकट में पड़ेंगे तब जी लगाकर मुझे खोजने लगेंगे।